اے یوحناس، اے لوگو، یہاں مکہ والے بھی مراد ہیں ابتدائی طور پر اور عمومی طور پر پوری کائنات والے. ان کن تم فی ریبن، اگر ہو تم شک میں، رابع یریب و ریبن، شک قلق ڈالنے والا، بے چین کرنے والا، ڈاؤٹس، واقعی شک ہے کس سے؟ من الباسی، کہ دوبارہ اٹھنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی آنی ہے. اگر ابھی بھی شک ہے تمہیں، پہلے تو آپ دیکھیں یا یوحناس میرے لیے ہے، اگر ہے تو پھر اس پکار کو اپنے دل پہ لیں گے کہ کہیں ابھی بھی میرے معمولات، میری زندگی، میرے نفع نقصان کے معاملے، میرے فیصلے، ڈیسیجنز صرف دنیا کی حقیقت کو سامنے رکھ کے تو نہیں ہے؟ کہا اگر شک ہے تو آؤ ذرا اپنی تخلیق پہ غور کر لو. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَاب، یہاں نمبر ایک لگا لیں، اے لکھ لیں یا ون لکھ لیں. غور تو کرو اس بات پہ کہ ہم نے تم کو پیدا کیا تھا تراب سے، سوکھی مٹی، تاروبا ترب. اسی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب ہے ابو تراب، مٹی کے باپ. پیار سے ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے اپنے داماد کو کہہ دیا ہو مٹی کے باپ، اور داماد غصے میں نہیں آئے، دھمکیاں نہیں دیں کہ آپ کو نہیں پتا آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں میں، بلکہ مسکرا دے. مٹی لگی ہوئی تھی اس وقت ان کے جسم کو. ڈسٹ کے معنوں میں انگلش میں انسان کیسے پیدا کیا گیا؟ پہلے سوکھی مٹی تھی، پھر کیا ہوا؟ ثم من نطفہ، پھر اس سے نطفہ بنا. نطفہ کا لفظ منی کے لیے آتا ہے، جو مادہ، ماں اور باپ کے جسم سے نکلتا ہے، ان دونوں کا مجموعہ. اس کا لفظی معنی بھی ملنا ہی ہوتا ہے، نطفہ، نطفہ، یعنی ہم ان دونوں کو ملا دیتے ہیں. ثم من علقتن، پھر خون کے لوتھڑے سے. علقہ کا لفظ عین لام قاف سے ہے، کہیں لفظ اردو میں یہ پڑھا؟ فلاں تو فضا میں معلق ہے، کہتے ہیں نا ہینگنگ، معلق، اسی سے یہ لفظ. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے جمع ہوا خون اور لٹکنا، دونوں معنی ہے. ہینگنگ کے معنوں میں دیکھیں تو لٹکنا، معلق. لیچ کہتے ہیں، کبھی آپ نے جونک دیکھی ہے؟ جہاں بھی جسم کے حصے میں لگائیں نا تو وہاں سے خون چوس کے پھول جاتی ہے، لیچ، اس کو جونک بولتے ہیں غالباً. یہ علقہ کی کیفیت ماں کے پیٹ میں جونک کی ہوتی ہے. ایک ایک کیفیت قرآن کے الفاظ اور سائنس کی زبان میں بالکل ایسی ہے کہ جس میں 19-20 کا بھی فرق نہیں. ماں کے رحم میں بچہ جب ٹھہرتا ہے، یعنی جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے، تو شروع کے کچھ دن جو ہوتے ہیں وہ علقہ کی صورت میں ہوتا ہے. فیٹس کہہ لیں آپ، جو چھوٹا سا بنتا ہے نا، وہ ماں کی رحم کے دیوار کے ساتھ چپک جاتا ہے شروع میں، پھر وہاں سے خون لے کے پھولتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ جب علقہ تھوڑا سا گرو اپ ہوتا ہے تو ثم من مدغہ، پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ خون کا لوتھڑا بنا تھا، پھر اس کے بعد گوشت کے ٹکڑے سے. مدغہ کا لفظ جو ہے نا، میم دعات غین اس کا روٹ ہے، گوشت کی بوٹی، چبائی ہوئی چیز کو مدغہ کہتے ہیں. کبھی آپ کسی کو چوئنگم کھا کے پھینکتا ہوا دیکھیں، دانتوں کے نشان بنے ہوتے ہیں، چھوٹی سی، لمبی سی، اتنی کی جیسے کشتی سی بنی ہوتی ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ جب مدغہ کی کیفیت میں ہوتا ہے، بالکل چوئنگم لگتا ہے، جیسے کوئی چوئنگم کھا کے پھینک دے نا، اور وہ چھوٹی سی چیوڈ قسم کی کشتی بنتی ہے، یہ بچے کی کیفیت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد مخلقتن او غیر مخلقتن، دونوں کا روٹ خا لام قاف ہے. مخلقہ کہتے ہیں تخلیق، خلقہ مکمل کے معنوں میں، یعنی بچہ اپنی پوری مدت گزارتا ہے پیٹ میں اور بالکل کلیئر شکل میں پیدا ہوتا ہے. اور غیر مخلقتن، نامکمل، ناقص، ادھورا بچہ پیدا ہو گیا، کوئی ٹانگ نہیں، ہاتھ نہیں، آنکھ نہیں، یا مس کیریج ہو گیا ان بٹوین ڈیز میں. یہ ساری چیزیں دونوں صورتوں کی اس میں پیش کی جاتی ہیں کہ کچھ بچے تو بالکل صحیح طرح سے آتے ہیں اور کچھ بیچارے ایسے ہیں جن کی پیدائش کے وقت جسم شکل خراب ہوتی ہے، اور بعض روح پھونکی جاتی ہے دنیا میں آ کے مر جاتے ہیں، یا بعض ماں کے پیٹ سے ہی مردہ پیدا ہوتے ہیں. یعنی تمہیں تو اپنی موت پہ اتنا بھی اختیار نہیں کہ تم نے دنیا میں آنا بھی ہے کہ نہیں آنا. کہا لنبین لکم، تاکہ ہم ظاہر فرما دیں تمہارے لیے کیا؟ اپنی قدرت کے کمال. یو ہو تم، اپنے آنے پہ بھی تم قادر نہیں ہو، جانے پہ کہاں ہوگے. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، پھر ہم قرار بخشتے ہیں رحموں میں. نُقِرُّ قاف را را سے، قرر یقرر، اسی سے لفظ قرۃ عین ہے، جمنا، قرار پکڑنا، ٹھنڈا ہونے کا معنی ہوتا ہے. یعنی ماں کے رحم میں بچے کو ٹھہرا دیتے ہیں. ارحام رحم کی جمع، یوٹرس، مدر ووم. हम ठहरा देते हैं रहमों में, माँ के फीटस में हम ठहरा देते हैं माँ नशा, जो हम चाहते हैं बेटा है के बेटी, सेहतमंद है के बीमार, कोई कमी है उसमें जिस्म में या नहीं है, हम जो चाहते हैं वो ठहराते हैं। तुम चाहो बेटा, तुम्हारी चाहत नहीं चलेगी। हम बेटा चाहते हैं बेटा बना देते हैं, हम चाहते हैं बेटी हम बना देते हैं, कब तक? इला अजले मुसम्मा, एक मुकर्रर मुद्दत तक। यह अजले मुसम्मा अमूमन कितनी होती है? बच्चे के माँ के पेट में रहने का वक्त। यहाँ अजले मुसम्मा से वैसे डिलीवरी का वक्त मुराद है, यानी उसकी डिलीवरी के वक्त तक हम उसको वहाँ रखते हैं। अमूमन ये वक्त 9 महीने और 10 दिन होते हैं। बाज़ बच्चे 9 माह के साथ ही आ जाते हैं, बाज़ 9 से कुछ दिन पहले ही आ जाते हैं, कुछ 10 दिन भी ज़्यादा होते हैं। कुछ तख्लीकात अल्लाह ताला ने ऐसी की हैं। एक इमाम थे, आपको पता है कितनी देर माँ के पेट में रहे? इमाम दहाक का नाम सुनेंगे कभी, अगर अल्लाह ने आपको मोहलत दी। हदीस के बहुत बड़े इमाम थे, मुस्कुराते हुए पैदा हुए थे। दहाक का कहते हैं हंसने को, वो हंसा तो दहाक इनका नाम पड़ा। यानी ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं कि बाज़ बच्चे दो दो ढाई ढाई साल माँ के पेट में रहे और बिल्कुल वो फिर सेहतमंद हालत में पैदा हुए। लेकिन आम तौर पे अल्लाह ताला ने इसकी जो मुद्दत रखी है इलाज अले मुसम्मा, वो तकरीबन 9 महीने और कुछ दिन की है। फिर क्या करते हैं? सुम नुखरिजुकुम तिफला, फिर हम निकालते हैं तुमको बच्चा बनाकर। तिफल का लफ्ज इसम जिन्स है, मुजक्कर मुअन्नस वाहिद जमा सब के लिए आता है। यानी फिर दुनिया में आते हो तो कितने प्यारे बच्चे बन के आ चुके होते हो। सुम लितबलुगु अशुद्दकुम, फिर तुम्हारी परवरिश करते हैं ताकि तुम पहुंच जाओ अपनी जवानियों को। अशुद्ध का लफ्ज 30 से 40 साल की मुद्दत के लिए आता है। कमाले कुव्वत जिस्मानी अकली पुख्तगी, तमीज़ की मुद्दत मुकम्मल हो चुकी होती है, यानी इंसान की शदीद जवानी। हमारे यहाँ तो जवानी कहते हैं ना टीन एज को, अकल भी नहीं होती, बात भी नहीं करनी आती, सब्ज़ी नहीं खरीदनी आती, उसको हम कहते हैं जवान हो गए हैं। कोई जवानी नहीं होती, बेवकूफ़ी की जवानी होती है। असल जवानी होती है 30 से 40 साल की उम्र की। इसीलिए रिवायात में आता है कि जन्नती मर्द और औरत 30 से 40 साल के बीच के होंगे, यानी तकरीबन 30-32 साल की उम्र के मर्द होंगे और उसी से कुछ कमों बेश औरतें होंगी। बिल्कुल इंसान जिस्मानी तौर पे भी इंजॉय करता है लाइफ को, बेवकूफ़ियाँ नहीं होती, बात बात पे रोने नहीं लग जाते कि माँ को फ़ोन करें क्या मुसीबत डाल दी, अब आटा कैसे गूँधूँ और रोटी कैसे पकाऊँ। हाँ, तो वहाँ अल्लाह ताला कहते हैं हम पहुँचाते हैं तुमको। इससे भी पता चलता है कि कोई जवानी तक पहुँच जाए ये सरासर अल्लाह की देन है। कोई माँ अपने बच्चे को खुराकें खिला खिला के जवान नहीं कर सकती, वरना वो तो एक साल में इसको जवान करना चाहेगी। फिर क्या होता है? वमिन कुमें युतवफ़ा, और फिर तुम में से कुछ तो फौत हो जाते हैं। कब? भरी जवानियों में। शबाब का वक्त था, सेहरा लगने के दिन थे, डोली में बैठने के दिन थे, और एकदम मलकुल मौत आता है और फौत कर देता है तुमको। वमिन कुमें युरद्दु इला अर्ज़लिल उमर, और बास को पहुंचा दिया जाता है नकम्मी उम्र तक, बेकार उम्र। अर्जल राजाल लाम है, रजला उर्दू में हम पढ़ चुके हैं ना, पीछे सुरहूत में पढ़ा है हजरत नूह के किस्से में, अराजिलुना याद है, रजील लोग तुम्हारी पैरवी करते हैं। अम्बिया कराम को ये ताने मिला करते थे कि कोई ख़ास पढ़े लिखे लोग तो आपके साथ नहीं है, बस रजील किस्म के लोग हैं। वही लफ्ज़ है ये अर्जल, सबसे ही ज़्यादा घटिया उम्र है ना, घटिया उम्र। किस रंग में घटिया से मुराद जहाँ कोई वो ह्यूमिलेटेड ना सोचें, मुराद ये कि ना बंदे का हुसन रहता है ना रंग ना रूप, हड्डियों में दर्द, खाएं तो हजम नहीं, पहने तो सजदा नहीं, चलें तो चल नहीं सकते, बैठें तो आह, उठें तो आह, खड़े हो नहीं सकते। इस किस्म की कैफियत इंसान की हो जाती हैं कि उस वक़्त उसको खुद भी नहीं लगता कि मैं कहाँ पहुँचा हुआ। फरमाए लिकैला यालम मिन बादि इल्मिन शैया, ये नकम्मी उम्र क्यों मिलती है? ताकि वो कुछ ना जाने हर चीज़ को जानने के बाद। यानी पहले तो बड़ी अक्ल वाला बनता था ना, किसी को बोलने नहीं देता था, फिर एक ऐसी उम्र आती है सब कुछ जानना हुआ भूल जाता है। अर्जल उम्र ज़िंदगी का वो दौर जब बुढ़ापे की वजह से इंसान की अक़ल और फहम की कुव्वतें बेकार हो जाती हैं, गौर व फ़िक्र की सलाहियतें सल्ब हो जाती हैं, याददाश्त का ख़जाना खाली हो जाता है। यूँ लगता है कि जैसे किसी मकतब में कभी कदम ही नहीं रखा था। एक वक्त था वो शख्स जो कल तक वक़ार और मतानत और इज्जत का पैकर था, आज ऐसी हरकतें करता है कि लोग हंसने लगते हैं, बावला बनता है, खाता है तो गिरने लगता है, बोलता है तो तो मुंह से थूक निकलते हैं। ये है इंसान, लिकई ला या आलमा मिम बादी इल्मिन शैया। कभी जवानियों में आपको अपने इल्म पे बड़ा मान हो ना, तो फौरन इस कैफियत को याद करें, बड़ा एकदम बच्चा बन जाता है। आप देखिए बड़ों और बच्चों में कितनी मुमासलत है ना। बच्चा बात बात पे रोता है, बड़े भी बात बात पे रोते हैं। जब बस जो नहीं चलता तो रोना ही है ना। बच्चे भी छोटी सी बातों पे मान जाते हैं, बड़े भी छोटी सी बात पे खुश होते हैं। सिर्फ उनका हाल पूछ लें आप, इतने भी मुस्कुरा के दुआएं देनी शुरू कर देंगे। बच्चे भी लेटे रहते हैं, बूढ़े भी अक्सर लेटे रहते हैं। बच्चे भी उठ के चल नहीं सकते, बूढ़े भी नहीं चल सकते। बच्चे भी अपनी बात अक्सर बता नहीं पाते, बूढ़े भी अपनी बता नहीं सकते। तकाबुल करते जाइए, अल्लाह ताला कहते हैं जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। ये है तुम्हारा असल इंसान, सब कुछ पाते हुए भी तुम कुछ ना पा रहे हो, ये है तुम्हारी हकीकत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चा माँ के पेट में 40 दिन तक गुजारता है तो फिर वो अलका बन जाता है, फिर 40 दिन गुजरने के बाद वो मुदगा बन जाता है, फिर 40 दिन के बाद अल्लाह ताला एक फ़रिश्ते को भेजते हैं। तकरीबन ये चौथा महीना शुरू हो चुका होता है प्रेगनेंसी का। फिर वो फ़रिश्ता उस बच्चे में रूह फूंकता है और इसको चार चीज़ें लिखने का अमर होता है, यानी माँ के पेट से ही चार बातें लिखी जाती हैं। नंबर एक, इसका रिस्क कितना होगा, खाम खा गम करते हैं क्या होगा, ले ऑफ हो गए, जॉब का क्या बनेगा, खाएंगे कहाँ से, पियेंगे कहाँ से। माँ के पेट से आप मैं लिखा के आए हुए अपना रिस्क। हमें नहीं पता अभी इस क्लास के बाद हमने क्या खाना है, लेकिन अल्लाह को पता है कि हमने क्या खाना है। दूसरी चीज़, उसकी मौत का वक्त, कर लें इंश्योरेंस, खाएं खुराकें, करवाएं चेकअप, मौत आके रहेगी। बीमारियों से तो आप अल्हम्दुलिल्लाह बच सकते हैं डॉक्टर्स को दिखाने से, लेकिन मौत है नहीं बच सकते। इसी तरह इसका सईद और शकी होना, यानी ये शख्स जन्नती होगा या जहन्नमी होगा, कहाँ जाएगा, किस हाल में होगा, मौत कहाँ आएगी, हर चीज़ अल्लाह ताला फरिश्ते के ज़रिए से लिखवा देता है। और बाद में आके फिर इंसान दुनिया में आप देखिए कि अपने आप को खुद मुख्तार समझने लगता है। अब इंसान की इस तख्लीक की बात को करने के बाद आगे ज़मीन की बात है, लेकिन एक और रिवायत दिखेगा। पहली बात यह कि इसमें अर्जल उम्र की बात आई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मसनून दुआ आप याद कर लीजिए, और जो अब 40-50 से ऊपर हो रहे हैं वो तो याद करना शुरू कर दें, क्योंकि अब तो बुढ़ापे के असरात 40 से ऊपर ही शुरू होने लगते हैं। लेकिन अर्जल उम्र अमूमन 60 से ऊपर की उम्र को कहा जाता है। आप दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल बुखली, अल्लाह मैं बखीली से तेरी पनाह में आती हूँ, यानी स्टिंजी ना हूँ, माल से मुझे इतनी मोहब्बत ना हो कि उसको सांप बन के चिपटी रहूँ, व आऊज़ु बिका मिनल जुबनी, और बुज़दिली से बचाना, कावर्डनेस, हिम्मत ही ना करूँ, नेकी का कोई फैसला ही ना कर सकूँ, हर वक्त यही देखती रहूँ कि दूसरे करेंगे तो फिर करूँगी, अच्छा ये ना हो जाए, अंदेशों में ही ना गुजार दूँ अपने वक्त को, बल्कि मैं बुज़दिल ना बनूँ, व आऊज़ु बिका मिनन औरद इला अर्ज़ल उमर, और तेरी पनाह में आती हूँ अर्ज़ल उमर से, कि जब दूसरे मेरी तरफ़ नज़रें लगा के पूछें कोई ख़बर आई, अल्लाह इन पर रहम कर दे, अल्लाह अब इनको पर्दे में कर दे। अब देखिए ऐसी उम्र आती है, लोग ला मुहाला उसकी मौत का इंतज़ार कर रहे होते हैं। कभी कहीं मौत की खबर आए अचानक तो लोग फ़ौरन कहते हैं फ़लाँ मर गया, पता चलता है वो नहीं, उसका जवान बच्चा मर गया। ये अल्लाह के फ़ैसले हैं। फिर आगे आपने फरमाया, वा आऊज़ु बिका मिन फितनते दुनिया व अज़ाबिल कब्र, और तेरी पनाह में आती हूँ दुनिया के फितनों से और कब्र के अजाब से। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, ये मुसनद अहमद और अबू याला की रिवायत है, हज़रत अनस इसके रावी हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बच्चा जब तक बालिग नहीं होता, इसके नेक अमल इसके वालिद या वालिदैन के हिसाब में लिखे जाते हैं, और अगर कोई वो बुरा अमल करे तो वो ना उसके हिसाब में लिखे जाते हैं ना माँ बाप के हिसाब में, है ना अल्लाह की रहमत। फिर जब वो बालिग हो जाता है तो कलम का हिसाब उसके लिए जारी हो जाता है, यानी फिर उसके अमल होंगे उसके लिए, और दो फरिश्ते जो इसके साथ साथ रहते हैं इनको हुक्म दे दिया जाता है कि वो इसकी हिफाजत करें, इसको कुव्वत दें। और जब हालत इस्लाम में 40 साल की उम्र को वो पहुंच जाता है तो अल्लाह ताला इसको तीन किस्म की बीमारियों से महफूज रखते हैं, जुनून क्रेजीनेस पागल होना, जुजाम ये भी बीमारी एक स्किन डिजीज़ है, और बरस कोढ़पन जिसको कहते हैं। और जब 50 साल की उम्र को पहुंचता है तो अल्लाह ताला इसका हिसाब हल्का कर देते हैं, और जब 60 साल की उम्र को पहुंचता है तो अल्लाह ताला इसको अपनी तरफ रुजू करने की तौफीक दे देते हैं, और जब 70 साल की उम्र को पहुंचता है तो सब आसमान वाले इससे मोहब्बत करने लगते हैं, और जब 80 साल की उम्र को पहुंच जाए तो अल्लाह ताला उसके पिछले अगले गुनाह माफ़ फरमा देते हैं, और इसको इसके अहले बैत के मामले में शिफात करने का हक दे देते हैं, और इसकी शिफात कबूल फरमाते हैं, और इसका लकब अमीनुल्लाह और असीरुल्लाह ही फिल अर्थ, यानी ज़मीन पे अल्लाह ताला का कैदी रख देते हैं। देखा जाए तो बूढ़ा बंदा एक कैदी होता है ना, क्योंकि इंसान की कुव्वत ख़त्म है, लज्जत नहीं रही, वाकई वो ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहा होता है। असीर कैदी को कहते हैं, पीछे पड़ चुके वो सारा, सर बकरा में गुजर चुका। और जब अर्जल उम्र तक पहुंच जाए तो इसके तमाम वो नेक आमाल नामे आमाल में बराबर लिखे जाते हैं जो वो अपनी सेहत और कुव्वत के ज़माने में किया करता था, और अगर कोई गुनाह इससे हो जाता है तो वो लिखा नहीं जाता। अब ये रिवायत है, इसकी सनत में थोड़ा सा कलाम है, लेकिन आप देखें तो ये रिवायत हमें मुख्तलिफ अंदाज में दूसरी जगहों पे मिलती है। बूढ़े लोग जो होते हैं ना, ये हकीकत में दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला की निशानियाँ होते हैं। इनके अंदर अपने बुढ़ापे को आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हमारी ज़ुबान कभी इनके आगे सख्त नहीं होगी, हम झुके हुए रहेंगे। जितनी अच्छी दोस्ती बूढ़े लोगों से आपकी हो सकती है ना, जवानों से नहीं होती। आप किसी जवान से दोस्ती करें, वो उसके पास वक्त ही नहीं आपके लिए, उसके अपने ही काम बड़े हैं। करके देखिए किसी बूढ़े से दोस्ती, हर वक्त अवेलेबल। और जवानों से करें, उनके कुछ मुतालबात भी होते हैं, वो कुछ ना चाहते हुए भी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं आपसे। आप बूढ़ों से दोस्तियाँ करके रखें, कुछ भी आपके साथ एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। फिर आप देखिए कि जवानों से आप जब दोस्तियाँ करते हैं, हो सकता है कभी वो अपने जोम में बड़ा अच्छा मशवरा आपको दें, लेकिन तजुर्बा नहीं, इल्म नहीं, इतनी अभी ऑब्जर्वेशन नहीं है। इसके बरक्स आप बूढ़े के साथ बात करके देखें, उससे मशवरा लें, तो उसके साथ साथ उसका तजुर्बा बोलेगा, उसका मुशाहिदा बोलेगा, तो बहुत सारी चीज़ों से आप बचेंगे। दुआ करें कि हमारे इर्द गिर्द जो बूढ़े लोग हैं, हम उनकी कदर करें, यकीन करें ये दुआ की पोटली है। कोई दुआ की पोटली को अगर नाम देना चाहे ना, तो वो माँ या बाप का नाम दे ले। और ये तो हमारे लिए जन्नत की एक किस्म की दुनिया में छोटी सी अल्लाह ताला ने ये चीज़ रखी हुई है, और अगर हम कहें कि अल्लाह अब इनको पूरा कर ले, अब इनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो मकसद तो हमारी ज़िंदगी का भी कोई नहीं, अगर हमारी जवानियाँ शैतान के रास्ते में लग रही हैं। अब इस सारे मज़मून को सामने रखते हुए आयत का अगला हिस्सा देखते हैं। व तरल अर्द हामिदतन, और तू देखता है कि ज़मीन खुश्क पड़ी है। हामिदा का लफ्ज़ हमदा से है, हा मीम दाल। हमूद कहते हैं पानी ना मिलने की वजह से ज़मीन का खुश्क होना। खुश्क ज़मीन जबकि इसमें कोई चीज़ ना उग सके, उसको हामिदा कहते हैं। यानी देखो ज़मीन खुश्क होती है, ये कब होता है? जब बिल्कुल खुश्की होती है दुनिया में, कहत साली है, बंजर ज़मीन थी, खिजां का मौसम लगा लें। फ़ैज़ा अनज़लना अलैहिल्मा, फिर हम इस पर बारिश का पानी डालते हैं, फिर बारिश हो जाती है, बारिशों का मौसम आ जाता है, फिर उस पानी से होता कि इहतज़त, तरोताज़ा हो जाती है। इख्तज़त का रूट गौर से सुनिएगा, क्योंकि गलती लगती है इसके अंदर। हा जार जा, ता नहीं है, ता इसमें मुअन्नस की है, क्योंकि आगे भी देखेंगे आप रबत व अम्बतत, ये सारे ता तानीस के हैं। हा जा जा, पीछे कहाँ पढ़ चुके हैं ये लफ्ज़, कोई गेस करेगा? बहुत करीब की सूरतों में आपने एक लफ्ज़ पढ़ा है, उसका भी यही रूट था। वह खुज़ी इलैकी, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कहा कि इसको हिलाओ अपनी तरफ। फ़ुज़ी इलई की भी जिस इन, किस खजूर के तने को अपनी तरफ हिलाओ, वही लफ्ज़ है। इशारा है कि बड़ी खूबसूरत फली फूली ज़मीन होती है, हवा चलती है, जो खोशे होते हैं वो हिलने लगते हैं, वह रबत और फूलने लगती है। रबत का क्या रूट होगा? रबा वाउ, रबवा का रूट, यानी फूलना, नशो नुमा। वह अम्बतत, और उगाती है, नबता से नून बा ता रूट है इसका। मिनकुल्ली जौजिम बहीच, हर खुशनुमा जोड़े को, जौज कहते हैं किस्म को, बहीज बहजा से, आगे सूरह कसस में भी आप पढ़ेंगे ये लफ्ज़, ज़ात बहजा, वहाँ मुअन्नस है इसलिए बहजा आया, लेकिन बहीज बहजा, बा हाजीम, खुश रंग और बा रौनक को कहते हैं, रौनक वाला, बहुत ब्यूटीफुल ग्रीन। पीछे बात हुई बग़ैर इल्म झगड़ों की, अब बात हो रही है कि तख्लीक का इल्म पाने के बाद देखो कि जो जात बंजर जमीन को बाद में सरसब्ज पौधों की शक्ल में ढाल सकता है, तो क्या फिर तुम्हें दुनिया में से ले जाने के बाद दोबारा नहीं उठा सकता? मट्टी से वो मादा बनता है जो इंसान की तख्लीक का बायस बना। इंसान की कोशिश कुछ भी नहीं होती, लेकिन कैसे ये मट्टी दोबारा फसलों की सूरत में ढलने लगती है, तो मान जाओ कि क़यामत आके रहेगी। ज़ालिक बि अन्ना अल्लाह हुवल हक, हक यही है कि अल्लाह की ज़ात बरहक है। वअन्नहु युहयिल मौता, और बेशक वो ज़िंदा करता है मुर्दों को या करेगा। वअन्नहु अला कुल्ली शयइन क़दीर, और वो हर चीज़ पे कुदरत रखता है। सारे दलाइल एक ही मज़मून को समझाने के हैं, और वो क्या कि क़यामत आएगी। मत करो झगड़े इसके बारे में, मत करो इसके बारे में, मान जाओ जो अल्लाह कर रहा है उसके लिए तुम्हें पैदा करना, तुम्हें ज़िंदा करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जैसे ज़मीन ज़िंदा होती है, तुम भी ज़िंदा होगे, और उसकी कुदरत पे कोई शक ना करे। मान जाओ कि वन्नसात आतियतुल्ला रईब फीहा, यकीनन क़यामत आने वाली है और उसके आने में कोई शक नहीं। और इस पे भी शक ना करो कि वन्नल्लाह यबअसु मन फिल कुबूर, बेशक अल्लाह ताला ज़िंदा करेगा हर उसको जो कब्रों में है। इसलिए ज़्यादा ना तंग किया करो कब्रों में जाने वालों को, सोए हुओं को, वहाँ मरे हुओं को। अल्लाह एक वक्त लाएगा जब वो सब जिंदा होंगे, फिर शौक़ पूरा कर लेना उनको सुनाने का और उनसे जाके बातें करने का। इतनी बड़ी हकीकत के बावजूद वमिनन्नासि मन युजादिलु फिल्लाह, 8वीं आयत है और दूसरी दफ़ा तस्करार है अल्लाह से झगड़े का। हर दौर में इंसान अल्लाह ताला के मामले में मुख्तलिफ झगड़े करता है। का बाज इंसानों में कोई ऐसा है जो अल्लाह के बारे में झगड़े करता है? मैं नहीं मानता किसी रब को, मेरे से नहीं मानी जाती रब की बात, हाँ ऐसा है वैसा है। ये बात क्या दलील दे रही है कि बेगैर इल्मिन, ला इल्म है, इल्म है ही नहीं। वला हुदन, और हिदायत भी कोई नहीं है इसके पास, कोई दलील नहीं है इसके पास। वला किताब मुनीर, और कोई रोशन किताब इसकी ज़िंदगी में खुली नहीं है। ऐसा अहमक है जिसमें फहमो फरासत का नाम तक नहीं, जिसने किसी जानने वाले से पूछकर भी अपनी जहालत को दूर नहीं किया। ये वो बदनसीब है जिसने किसी सहीफ़ा आसमानी का मुतालिया करने की जहमत भी नहीं की, और बात करता है अल्लाह की, उसके बारे में वसवसे डालता है, झगड़े करता है, तकब्बुर करता है, सुबह शाम अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है। अब ज़रा अगली आयत को इमेजिन करिए और साथ विजुलाइज करें, तसव्वुर में देखिएगा कि क्या मंजर सामने आता है। अल्लाह ताला कहते हैं ये झगड़ालू या लड़ाका है कैसा? सानिया इतफ़ी लियुदिल अनसबीलिल्लाह, तकब्बुर से गर्दन मोड़ते हुए ताकि बहकाए दूसरों को भी अल्लाह के रास्ते से। सानी का लफ्ज़ इस नैन से है, किसको कहते हैं इस नैन? तस्निया, दोहरा, तो यहाँ दोहरा करने के माने में। और इत्फ कहते हैं मोड़ने वाला अपने पहलू को, ये जो दो कंधों के बीच में जो जगह होती है ना, इसको सोचे, यानी आप बैठे में कोई आपको कहते हैं आओ किताब पढ़े, तो आप यूं एकदम मोड़ते हैं, ये आपका ये जो मोड़ना है ना, ये है सानी इत्फ़ाई, यानी कंधे मोड़ के हूँ करता हुआ वहाँ से उठ जाता है। मैं नहीं सुनता, मुझे ना सुनाया करो, मुझे नहीं अच्छा लगती ये बातें तुम्हारी जो करते हो, गर्दन को मरोड़ना नोह के सेंस में। का कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको, इसका नसीब ही ऐसा है। लहू फ़ि दुनिया खिज़्यून, इसके लिए दुनिया में भी रुसवाई है। कैसे? खाएगा थके सारा दिन और रात को थक हार के सो जाएगा, इसके उस वक्त ही नहीं होना कि अपने लिए भी कुछ कर सके। व नुज़ीक़ुहु यौमल क़ियामति अज़ाबल हरीक़, और हम चखाएंगे इसको क़्यामत के दिन जलाने वाली आग का अजाब। नुज़ीक ज़ौक से है, ज़ुक ज़ाल वौक़ाफ, हरीक हरका से है, जलाना हारक़ाफ। फ़ईल के वज़न पर सिफ़त मुशब्बह, जलाने वाला या आग का अजाब, दोनों ही मुराद हैं, यानी ऐसे शख्स का नसीब आग है। इसको छोड़ दो, ये जलेगा। अब इसको दुनिया में नहीं माननी ना, तो इसको इसके हाल पे छोड़ दो। और याद रखो ज़ालिका बिमा क़द्दमत यदाक, या अंदाज़ देखिए, फ़ौरन हाजिर के सीगों में बात आ गई। पहले बात हो रही थी किसी एक शख्स की, और अब ऐसे लग रहा है कि हर सुनने और सुनाने वाले को कहा जा रहा है ज़ालिका बिमा क़द्दमत यदाक, ये है सज़ा इस बात की जो तेरे दोनों हाथों ने आगे भेजा। हर बंदा अपने आप को टटोलने लगता है कि हाय हाय, ये मेरी बात ही तो नहीं हो रही, और जो कुछ भी इसके साथ हुआ ये कोई जुल्म नहीं, क्योंकि ان الله ليس بظلام للعبيد، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. ایک لفظ ہے ظالم، اس سے اسم تفضیل ہے، ظلام. پڑھیں گے آپ انشاءاللہ اسم صفت کی قسموں میں، اسم تفضیل سب سے زیادہ ظلم کرنے والا، فعال کا وزن ہے، اور للعبید عبد کی تصغیر ہے. عربی زبان میں پیچھے بھی یہ باتوں سے آپ کو کئی دفعہ بتائی ہے کہ چھوٹا کر دیا جاتا ہے چیز کو، جیسے صغیر ہے نا لفظ، جیسے عبد ہے تو اس سے عبید، ہمارے یہاں جیسے کہتے ہیں نا بچہ، پھر کہتے ہیں بچونگڑا، تو وہ بچونگڑا بہت ہی چھوٹا سا ذہن میں آتا ہے نا، اس طرح عبد بھی چھوٹا تھا اور عبید تو اس سے بھی چھوٹا ہے، کہ اللہ اپنے کسی چھوٹے سے چھوٹے بندے پہ ظلم نہیں کرتا. جو دنیا میں کندھے اچکائے گا نا، جو اپنی کروٹیں اس کتاب سے پھیر پھیر کے رکھے گا، دنیا میں بھی اس کو ذلت ملے گی اور آخرت میں بھی. اور پھر بڑی خوبصورت آیت ہے، یہ آیت سنتے اور سناتے وقت ہر بندہ تصور میں خود کو رکھے کہ کہیں یہ میں تو نہیں. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو عبادت کرتا ہے اللہ کی کناروں پر رہ کر، کنارے پہ کھڑے کھڑے لاتا ہے. امیجن کریں یہی روم لے لیں جس میں ہم بیٹھے ہوئے، ایک یہاں بیٹھی ہیں اسٹوڈنٹ جو یہاں سے نکلنے میں بھی شاید 5 منٹ لگائیں گی باہر جانے تک، کتنے مرحلے ہیں ان کے لیے. اور آپ امیجن کریں کہ کوئی شخص بالکل باہر مین گیٹ کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے. یہ ہے علا حرفن، حرفہ حرف کنارے کو کہتے ہیں، ایچ کو کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کا بالکل باہر کا جو حصہ ہوتا ہے. اب یہاں امیجن کریں دین اسلام کا ایک کمرہ ہے، ایک ہال ہے، اور اس کا کنارہ ہے، اور وہاں ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، اور کرتا کیا ہے؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر پہنچتی ہے اس کو کوئی بھلائی، یعنی عبادت، سکون میں کوئی خیر ملی، قرآن سننے آیا، بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، مزہ آ رہا ہے، فائدے کی چیزیں لگ رہی ہیں، ہنسی مذاق ہے، نطمئن بھی، بڑے اطمینان سے بیٹھا رہتا ہے کہ چلو جوکنگ بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، گوسپ بھی ہے، اور اچھا لگ رہا ہے، دین اسلام خوبصورت ہے. لیکن وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر پہنچ جائے اس کو کوئی فتنہ، کوئی آزمائش، نن قلب علی وجہی، تو فوراً دین سے منہ موڑتا ہوا چل پڑتا ہے. اس صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں جھگڑوں کی اور منہ موڑنے کی بڑی بات آ رہی ہے، یعنی پھر کمرے کا دروازہ کھول کے باہر ہی بھاگ جاتا ہے، اندر آتا ہی نہیں پورا، کہ کہیں اندر آ کے بیٹھنا پڑ گیا اور نکلنا مشکل نہ ہو جائے، اٹھوں گا تو سارے دیکھیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ کناروں پہ رہو. کا اس نے تو سوچا کہ مجھے دو فائدے ہوں گے، اس دین میں فائدہ ہوگا تو اندر آ جاؤں گا، اور اس دین میں کوئی نقصان لگا، کوئی قربانی دینی پڑی، کچھ تھوڑی سی ذمہ داری آ گئی تو ہٹ جاؤں گا. لیکن ہوا کیا؟ ذالک هو الخسران المبین، اس کو تو دونوں ہی خسارے ہیں، بڑے بڑے خسارے، نہ دنیا کا نہ آخرت کا فائدہ. اب دیکھیے کہ ایسا شخص کون ہوتا ہے، ریلکٹنٹ ہوتا ہے نا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نان کانفیڈنٹ شخص ہو سکتا ہے، غیر مستقل مزاج، غیر مستقر. کئی لوگ آتے ہی رہتے ہیں لیکن کمٹ نہیں کرتے، نہیں نہیں بن جائیں گے، پابندی ہوگی، ذمہ داری ہوگی، پھر رول کال لگ جائے گی، پھر ہمیں اوکے کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرداروں کی بات کرتے ہیں کہ جس کے دل میں ابھی اسلام آیا ہی نہیں پورا. آپ سوچیں ذرا اپنے آپ کو، پہلے تو میں اور آپ، ہم کتنے قدم دین میں آ چکے ہیں. یہ کس شخص کی کہانی ہے؟ یہ اس شخص کی کہانی ہے جو دین کو ہر قیمت پر نہیں لینا چاہتا، قرآن کو ہر قیمت پہ نہیں لینا چاہتا. ذرا کہہ کے دیکھیں اپنے آپ کو کہ اللہ اس کتاب کو ہر قیمت پہ لوں گی، آپ کا دل کھلے گا اور آپ کے نہیں سوچتی ہوں مشکل دیکھتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے اس سے بڑا پتھر آ جائے گا مشکلات کا آپ پر. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس دین کو ہر قیمت پر لیں. دیکھیے سونے کا ایک سیٹ کئی ہزار کا یا لاکھوں کا آپ لیں گے نا، آپ ہر قیمت پہ لیں گے. کل سونا 4000 روپے کا تولا تھا تو بھی لوگ لیتے تھے، آج 46000 کا ہو گیا تو بھی لیتے ہیں. کیوں؟ ہر قیمت پہ لینا ہے جی، بچی کی شادی ہے لینا پڑے گا، سسرال میں دینا ہے، ساس کے کڑے ہیں لینے پڑیں گے. کوئی نہیں کہے گا کہ آپ ساس کو کہہ دو پلیز سونے کی بجائے چاندی کی چوڑیاں لے لو تو بہتر ہے، کیونکہ سونا مہنگا ہو گیا ہے. لے رہے ہیں، فریج کل سستے تھے آج مہنگے ہیں لے رہے ہیں، گھر کل سستے تھے آج مہنگے ہیں دھڑا دھڑ لے رہے ہیں. کوئی بندہ بتائے ہم میں سے کہ جو چیز ہم نے لینی ہوتی ہے مہنگی ہو جائے تو چھوڑ دیں، لیتے ہیں. کبھی ضرورت کی چیزیں ہیں، کبھی تعیشات کی چیزیں ہیں. आटा महंगा हो गया, 100 रुपये किलो भी हो गया तो भी लेना ही लेना है। तो दीन ही ऐसा रह गया कि कहते नहीं, पहले सस्ता करो, आसान करो, शर्तें ख़त्म करो, पाबंदियाँ छोड़ो, मनवाने की बजाय मानो हमारी, हमसे पूछ के असूल बनाओ, हम जो कहें उसको ओके करो, फिर आएंगे। ये वो शख्स है जो ख्वाहिशात पे जीता है। दीन से वक्ती और रस्मी ताल्लुक़ है, या थोड़ा सा जज्बाती ताल्लुक़, थोड़ा जज्बात में आके दीन पे चढ़ा, नुकसान हुआ, पीछे हट गया। असल में वही कहानी है जो सूरत बकरा में आ गई, फलम्मा दा लहुम मशौफी, जब रोशनी करता है इनके लिए तो चल पड़ते हैं, वह इज़ाज़लमा अलैहिम क़ामू, जब अंधेरे आते हैं तो खड़े हो जाते हैं। और याद रखिए, जिसका दिल गैर अल्लाह में अटका होता है, उसका दिल अल्लाह में नहीं आता। इसीलिए अब अगली आयतों में ज़रा कुछ मज़ीद तवज्जो दिलाई जा रही है इस किरदार पर। यदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहु, वो इबादत करता है अल्लाह के सिवा उसकी जो ना ज़र्र पहुंचा सके उसको, वमा ला यनफउहु, और ना उसको कोई नफ़ा दे सके। ज़ालिक हुवद दलालुल बईद, यही है इंतहाई गुमराही, ये है वजह। कौन बंदा दीन के किनारों पे रहता है? जिसका दिल गैर अल्लाह में अटका हुआ है, जिसको अभी दुनिया के कुछ और फ़वाद लेने हैं। और गैर अल्लाह तो सुस्ती भी हो सकती है ना, नींद भी हो सकती है, नफ्स की सहूलत भी हो सकती है, पाबंदियों को बर्दाश्त ना करना भी हो सकता है। का ऐसा शख्स दलालुल बईद, किनारों पे आके जो पलट जाए वो तो बड़ा बदनसीब है। समंदर के किनारे से जो प्यासा जाता है वो तो ज़्यादा दुखी है ना। कहा इसका हाल क्या है, यद उ लमन दर रूह अक्रब में नफी, इस हिस्से को तो दिल के दरवाजे खोल के सुनिए। वो पूछता है उसे जिसकी ज़र्र रसानी ज़्यादा करीब है इसकी नफ़े रसानी से। बड़ी मुश्किल आयत है, अमल के एतबार से भी और मानी समझने के भी नाते से। अल्लाह ताला कहते हैं, नहीं इसको अच्छा लगता, आसान लगता तो दीन नहीं लगता। इसके अलावा इस दीन को छोड़कर किनारों पे क्यों खड़ा है? उस चीज़ को पुकार रहा है, उसके ख्याल में वो चीज़ बड़ी नफ़ामंद है। वो उसकी जॉब भी हो सकती है, वो उसकी यूनिवर्सिटी की तालीम भी हो सकती है, वो उसका बच्चा भी हो सकता है, वो उसकी घरदारी उसकी जॉब भी है। लेकिन याद रखो, दर रूह अक्रब मिन नफ़ी, उसका ज़रर नफ़े से ज़्यादा करीब है। कैसे? वलअस्रिन्न अलइंसान अलफ़ी खुसर, ज़माने की कसम इंसान खसारे में, इसलिए कि दुनिया का थोड़ा भी थोड़ा है ये तो बहुत ही थोड़ा है। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गरूर, मताउल गरूर का बड़े से बड़ा नफ़ा भी ले लो तो याद रखो वो आखरत के मामले में ज़रर ही है। देखिए कि आप किसी एक मुल्क में रहते हो, वहाँ आपने लाखों की चीज़ें जमा की हों और आपको फ़ौरन वहाँ से निकलना पड़े बग़ैर किसी नोटिस के, आप दूसरे मुल्क में खाली हाथ आ गए। मुझे बताइए कि पिछले मुल्क में आपकी छोड़ी हुई लाखों की चीज़ें आपके लिए वहाँ क्या हैं? दर्रुहु अक्रबु मिन नफ़ी ही, और मोटे आंसू निकलेंगे याद कर कर के चीज़ों को। मौत की सूरत में भी अचानक नोटिस होता है, डिपोर्ट होते हैं हम इस दुनिया से अगली दुनिया में। एक कुर्सी मेज़ तक हमें कोई साथ नहीं लेके जाने देता कि मिट्टी में ना डालो, इसके बेड पे ही डाल दो। तो क्या हुआ, दुनिया का नफ़ा ज़रर के ज़्यादा करीब है। लबीसल मौला वलबीसल अशीर, हाय ये कितना बुरा दोस्त है और बहुत ही बुरा साथी है। ऐसा बंदा जिसकी दोस्ती में आ गया वो उसका भी बेड़ा गर्क कर देगा। ऐसी बातें करने वाला अकेला नहीं होता, अमूमन अपने हम ख्याल लोगों को साथ मिला के बातें करता है कि नहीं, ये कर लो तो वो है, वो कर लो तो ये है। ऐसा शख्स कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। कैसे अल्लाह ताला ने दूध का दूध और पानी का पानी निथार के रख दिया कि दुनिया के नफ़ों के लिए दीन के किनारों पे रहते हो? आप ज़रा सोचें। चले, मैंने तो कुरान की मिसाल आपको दी ना इस कमरे के नाते से, आम हालात में देख लें हम कहाँ खड़े हुए हैं दीन के नाते से। हम दीन के नाम पे भी दीन के किनारों में खड़े होते हैं बाज़ औक़ात। हम नमाज भी पढ़ते हैं तो आखिरी सफ़ में खड़ा होना चाहते हैं, हम कुरान भी सुनते हैं तो कहते हैं वहाँ बैठें जहाँ हमें कोई डिस्ट्रैक्ट ना करें, हमारी तरफ किसी की नज़र ना पड़े। और हम टेस्ट भी तब देंगे जब हमारा दिल चाहेगा। गुनाह को छोड़ दें, सिर्फ नेकियों पे अपने आप को देख लीजिए। जो बंदा दीन को फूक फूक के ले रहा है ना, याद रखे कि वो बहुत कीमती चीज़ें मिस कर देगा। बड़ी होश मिलाने वाली आयत है और होश गुम कराने वाली आयत भी है कि इंसान सोच ले, तू अपना नफा कर रहा है कि नुकसान कर रहा है। अब देखिए जो किनारों पे खड़े होते हैं ना, वो एक तो अपना नुकसान करते हैं ना, दूसरा दूसरों का भी करते हैं। इमेजिन करें इसी हॉल के दरवाजे तक कुछ लोग खड़े हो जाएं, हो सकता है पीछे से चंद सिस्टर्स और आ रही हों कि चले आज हम भी सुनते हैं कुरान थोड़ा सा। बाहर देखें, हाय लोग तो दरवाजे तक खड़े हैं, नहीं, अंदर बड़ी घबराहट होगी, भाग जाएंगे। दरवाजों में खड़े हुए लोग आने वालों का रास्ता भी बंद कर लेते हैं। ये वही बात है जो पीछे सूरह बकरा में कह दी गई कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ दीन के अंदर, तुम किनारों पे खड़े होके दूसरों को मत रोको, गैर अल्लाह को छोड़ो अल्लाह की तरफ आओ, मत पुकारो उनको जिनको पुकार के नफ़े से ज़्यादा नुकसान होगा। कितने बुरे साथी बनते हो। यहाँ जो लफ्ज़ अशीर का आया है, अशरा से, इंसान के बाप की तरफ से रिश्तेदारों की जमात को अशरा कहते हैं, इसी से लफ्ज़ अशीरा है ना, सूरह तौबा में आप पढ़ चुके, वाशीरतुकुम, अशरा मिलजुल कर रहने को कहते हैं, इसी से लफ्ज़ मुआशरा भी है। फिर अशीर अब साथी के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे रिश्तेदार हों या गैर हों। हर एक अपने आप को चेक करे, हम कहाँ खड़े हैं। मुझे लगता है कि इस आयत के बाद वाकई हमें तिलावत सुन के अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है। किसी समंदर के किनारे के ऊपर खड़े किसी शख्स को सोचें, ज़रा ऊंची लहर आएगी ना तो किनारों से लेके उसको डुबो देगी, बहुत ख़तरे में। आप देखें कि जब कोई कश्ती में बैठता है, किनारों पे जो बैठते हैं ना, कश्ती डूबेगी सबसे पहले किनारे वाला गिरेगा, मिडल पार्ट हमेशा सिक्योर होता है, बच जाता है इंसान। हम इस कमरे में खुदा ना खास्ता अल्लाह बचा के रखे, लेकिन बाहर से कोई आए सबसे पहले किनारों के पास बैठे हुए को लूटेगा, कोई जानवर आए सबसे पहले किनारों पे बैठे हुए को पकड़ेगा। सिक्योर होता है बंदा जो मिडल में बैठे। हम जब पूरे के पूरे दीन में आते हैं ना, हम पूरे सिक्योर हैं, डिसाइड कर दिया, बता दिया सबको, आ गए हैं पूरे, मत रखो हमसे उम्मीदें, मत हमें बार बार तंग करो, हम नहीं आएंगे तुम्हारी गुनाह की चीज़ों की तरफ। फिर जो बीच में होता है वो चारों तरफ से सराउंडेड होता है, कितनों को फलांग के कोई आएगा ना उस पर हमला करने। इसलिए जब बंदा दीन में बिल्कुल मिडल में आता है ना, तो उसको बड़े खूबसूरत साथी मिलते हैं दिफा करने वाले, वो उसकी खूबियाँ बयान करते हैं, फिर इस तरीके से वो लोग उसको अच्छी तरह से बुलाते हैं, नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, तिलावत सुनते हैं यहाँ तक। और हकीकत है कि आयत का हक कभी भी अता नहीं हुआ, तिलावत सुन के हम फिर गौर करेंगे।
بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير